श्री कुंदकुंद आचार्य देव के द्वारा लिखा गया है। ऐसा कहने में आता है जब कुंदकुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे तो विदेह क्षेत्र से जब वे लौटे तो उन्होंने प्रवचन यानी वचन कैसा विशेष रूप का जो वचन यानी दिव्य ध्वनि जो सीमंदर भगवान सीमंदर परमात्मा को साक्षात जिन्होंने सुना था ऐसे भगवान की वाणी सुनने के बाद उनके मन में जो बात आई वह उन्होंने इस शास्त्र में लिखी है ऐसा कहने में आता है और उसमें कोई दुमत भी नहीं होना चाहिए। बात तो ऐसी है प्रवचन सार यानी जिसका हमने अन्य किताब जो अपने पास है वह दिव्य ध्वनि सार यानी जो सिमंदर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि खिरी थी और 7 दिन तक लगातार इनके पंचम काल में भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था तो उसका सार इसमें आया हुआ है। हमने समय सार पढ़ा था। समय सार तो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है यानी दृष्टि प्रधान यानी क्या जैसा वस्तु का स्वरूप है त्रिकाल स्वरूप ऐसा जो द्रव्य का त्रिकाल स्वभाव है वह दृष्टि का विषय है और श्रद्धा का विषय है ऐसा जो था उसका वर्णन समय सार में किया गया था। अब प्रवचन सार में तो यह ज्ञान प्रदान कथन से बात आएगी तो ज्ञान किसको न जानेगा ज्ञान तो सबको जानेगा और सबको जाने और जो जो बात ज्ञान में आती है यानी उसमें द्रव्य की भी बात आएगी पर्याय की भी बात आएगी यानी द्रव्य दृष्टि से और पर्याय दृष्टि से दोनों अपेक्षा से यहाँ जो कथन किया गया है वह प्रवचन सार हमारे आज इतना सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहा है। देखो 2000 साल हुए हैं आप जरा विचार तो करें कि हमें यह क्यों उपलब्ध है क्योंकि हमारे बाप दादों ने इसको संभाल के रखा है। देखो हर ऐसा कहने में आता है कि हर 20 साल में पीढ़ी बदलती है एक पीढ़ी गई दूसरी पीढ़ी गई अगर बीच में समझ लीजिए 3-4 पीढ़ी ऐसी आ जाए कि वो जैन दर्शन की कुछ बात ही उनको पता नहीं लगे तो हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चों को क्या बात आएगी। देखो जमाना तो इतना जोर से पलट रहा है कि हमें तो थोड़ी लौकिक बात करूंगा कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में सिखाने में कमी बना लगता है जब तक वो यस 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 नहीं करता है तो वो कोई गंवार है कोई मतलब क्या बोलते हैं एकदम थर्ड ग्रेड आदमी है ऐसा उसको लगता है क्या। लेकिन बात तो ऐसी है उसके सामने आप जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है उस जमाने की वो मातृभाषा थी उस जिनवानी की भाषा जो है वह भाषा का भाषांतर होते 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 अभी यहाँ हिंदी और गुजराती में हमें उपलब्ध है लेकिन दिन तो ऐसे खोटे आए हुए हैं कि गुजराती के बच्चे गुजराती नहीं जानते और हिंदी के बच्चे हिंदी नहीं जानते। यानी इनके अपने माता के साथ बोलने के लिए मीडिएटर चाहिए। क्यों? हम अपने माता के साथ माता की भाषा में न बोले और बीच में वो कोई बीच में ऐसा ट्रांसलेट करने वाला मिले कि मम्मी तो मदर ऐसा जो कुछ होता होगा जो, तो कैसा है प्रसंग ऐसा बाका आया हुआ है। तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है और होनी ही चाहिए कि ये बात हम स्वयं समझे और हमारे बाल बच्चों तक पहुंचाए। ये हर माता पिता का पहला कर्तव्य होता है कि हम स्वयं इस बात को समझे। लेकिन हम तो इतने एस्केपिज्म में एक्सपर्ट हो गए हैं कि हमने तो बदुआ है हमारे बच्चों ने सिखवा दो, हमारे बच्चा हमें तो सर्वज्ञना बाप है, हमारे कहा जो है नहीं, हमारा बच्चा ने सिखवा दो। लेकिन हर वक्त इस बात को हमें एहसास होना चाहिए कि ये 2000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ आज तक हमें उपलब्ध कैसा है, क्योंकि हमारे जो वंशज है उन्होंने वो संभाल के रखे हैं और इस कारण हमें आज तक वो पहुंचा हुआ है। देखो आपको शायद पता नहीं होगा, ये जो भावलिंगी संत होते हैं, तीन कषाय के चोकड़ी के अभावपूर्वक जिनमें वीतराता वर्तती है, ऐसे जो मुनिराज होते हैं वे तो अपने स्वरूप में ही गुप्त रहते हैं, अपने स्वरूप में ही तल्लीन रहते हैं, उन्हें दुनिया की कोई पड़ी नहीं रहती है। लेकिन ऐसे अवस्था में भी जब उनका उपयोग अपने स्वरूप में नहीं टिकता है तो यह शास्त्र लिखने का प्रमाद उनसे होता है। ख्याल में आया? उनको तो प्रमाद कहा गया है, यह हमारा बड़ा उपकार है उनका कि उनके प्रमाद आया। अब वे क्या करते हैं, वन में निवास करने वाले ऐसे जो मुनिराज है वो वहां से पत्तल लेके पत्तल के ऊपर कहीं ऐसे कोई वहां से जो भी मिलता हो उनसे और उनका होता हो उससे वो लिख देते हैं, ताल पत्र पे लिखते हैं और वो सारा एक पन्ना दो पन्ना चार पन्ना दस पन्ना हजार पन्ना साथ में लेके पोते घूमते नहीं है, वो लिखे वहीं छोड़ देते हैं। वहां से कहीं चले वहां जहां उनको लगे कि भाई अभी वहां स्थिरता करे, स्थिरता हुई होने के बाद नहीं हुई तो अगली बात वहां लिखेंगे और वहीं वो छोड़ के जाएंगे। तो विचार करो ऐसे गाथाएं जो आदि से लेके अंत तक उनको संभालने वाले उस समय कोई ऐसे भाग्यशाली जीव होंगे कि उनके कारण वो आज तक टिका हुआ है, और ऐसे भी कई जीव होंगे कि उन्होंने ये शास्त्र लिखित रूप से तैयार रखे हैं। ध्यान में आया? तो हमें इस बात का तो बिल्कुल अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि ये बात तो ऐसी है, ये हम स्वयं सीखे। ख्याल में आया? और सीखने के साथ साथ हमारे बच्चों को भी ये बात पहुंचावे, ये हमारी स्वयं की जिम्मेवारी है। तो इस तरह से जब हम ये देखते हैं तो यहाँ पहले लिखा है ओम, ये मेरे यहाँ पेज नंबर है फर्स्ट, हाँ बराबर वही। ओम का अर्थ तो आप जानते ही हैं, ओम यह शब्द जो है वो अधिक आ अधिक उ अधिक म, ऐसे अरहंत अशरीरी यानी सिद्ध, आ यानी आचार्य, उ यानी उपाध्याय और म यानी मुनि, इस तरह ओम यह शब्द बना हुआ है। यह ओम कहते ही पांचों परमेश्वरी उसमें गर्भित है, इस बात का हमें पता लगता है। तो फिर क्या कहा लिखा है यहाँ, नमः श्री सिद्धेभ्यः, यानी प्रथम में प्रथम उस अवस्था को नमस्कार किया है। ये सिद्ध जो अवस्था है वो किसकी अवस्था होनी चाहिए? हाँ बताइए, सिद्ध अवस्था किसकी है? मोह गया उसकी, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन वो कौन से द्रव्य की अवस्था है ये मुझे पूछना है। अजय जीव द्रव्य के, तो मैं भी जीव द्रव्य हूं ना क्या? नहीं तो ये अवस्था मेरे में भी प्रकट हो सकेगी क्या? नहीं, ख्याल में है। ये जब हम ओम नमः सिद्धेभ्यः ऐसा जब कहते हैं, तीन बार हम कहते हैं, तो तीन बार में तो पहले दो बार तो मान लो, ऐसे तो अभी उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले तो वो सिद्ध जो अभी मौजूद है उनके लिए हम नमस्कार करेंगे, और दूसरे जो ओम नमः सिद्धेभ्यः कहते हैं, जो भूतकाल में हुए और जो वर्तमान में होंगे और जो भविष्य में होंगे, तो भविष्य में अपना नंबर लगेगा कि नहीं? हाँ, ख्याल में आया। तो भविष्य में भी क्या कहते हैं, ये हमने वो पूजा में पढ़ा है ना, भूतकाल प्रभु आपका जो मेरा वर्तमान, और जो वर्तमान है आपका वह भविष्य मम जान, तुम जानना, क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इस बात का तो हमें भी एहसास है, और मैं भी भविष्य में भगवान बनूंगा, ऐसे मेरे में इच्छा भी है और मेरा प्रयत्न भी है। जब जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें बाल बच्चा हो जाए, हमें कोई पैसा मिले, धंधा नौकरी मिले, जो चालू है उसमें बरकत मिले, हाँ मेरे लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, ऐसी लौकिक बात हम मांगते हैं तो हमारे जैसे भिखारी हम ही है। अरे जो अनंत गुणों का पिंड ऐसा जो स्वयं है, वह दूसरे के पास भीख मांगने जाए, ये अंबानी है ना आपका, वो कहीं जाता होगा कि नहीं भीख मांगने को? अरे उसके पास तो इतना पैसा पड़ा हुआ है कि उसके सामने भिखारियों की लाइन लगे, वो दूसरे के पास भीख क्यों मांगे? और मैं स्वयं अनंत गुणों का पिंड हूँ, इस बात का ही मुझे पता नहीं है तो मैं साहब सबके सामने जाके हाथ जोड़े बिना नहीं रहूंगा। तो यहाँ कहते हैं कि मैं भी भविष्य में सिद्ध बनूंगा, क्योंकि यह सिद्ध अवस्था जो है वह जीव की है, और जो उसे प्राप्त करे उसकी है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो ये जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये सारी अवस्थाएं जीव की ही है। कब? और यह जीव की अवस्था है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, तलवार किसकी, जो हाँ सिर्फ यहाँ कवर पे लगाए उसकी नहीं, जो उसका यूज करे उसकी। ये आपके मित्र होंगे ऐसा बोलने वाले कि नहीं? पंडित पूनम चंद जी छावड़ा बोलते हैं हमेशा ऐसा, हाँ जो मारे उसकी, ऐसा कहते हैं, यानी वो चलाने वाला होगा वो उसकी। और हमारे पास यह आत्मा है, और वह हम ही स्वयं आत्मा है, हमारे पास की क्या बात है, और हम उसका इस्तेमाल न करें, उसके तरफ दृष्टि न देवे, तो हमारे में वह सिद्धावस्था आते रही, ख्याल में आने से रही राधे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ओम नमः श्री सिद्धेभ्यः, और आगे कहते हैं नमो अनेकांताय, यानी यहाँ जो जैन दर्शन है वो अनेकांत जो धर्म स्वरूप है उसका कहने वाला, अनेकांताय यानी अनेकांत ऐसा स्वरूप जो धर्म का है, जो वस्तु स्वरूप है, उसे भी यहाँ नमस्कार किया गया है। अब आगे कहते हैं श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणित श्री प्रवचन सार। अब यहाँ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, यहाँ उन्होंने उसके तीन भेद किए हैं। तो पहला अधिकार जो है वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, यानी ज्ञान क्या है, ज्ञान तत्व कैसा होता है, उसके बारे में यहाँ हमें पहले समझाएंगे। दूसरा जो होगा वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, तो जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो हमें उसका पता भी लग जाएगा। अभी इसमें क्या है, इस शास्त्र में विशेष रूप से कि यहाँ पर श्रीमद् अमृतचंद्र जो है, अमृतचंद्र जो आचार्य हुए थे, उनकी तत्व प्रदीपिका नामक वो टीका है वह भी है, और जैसेन आचार्य जो है तो उनके भी तात्पर्य वृत्ति नाम की जो टीका है, इन दोनों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अभी इसमें आगे, अभी इसमें ऐसी बात है कि यहाँ जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा कि देखो पेज नंबर कोई भी 10 में 10 निकालिए तो इसमें जल्दी पता लगेगा, पेज नंबर 10। तो इसमें जो छठा नंबर का, जो छठी नंबर की जो गाथा है, उसके बाद में जो संपद्यते ही
दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र वगैरह जो बात है वो जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है वह तो आचार्य आचार्य अमृत चंद्र इनकी बताई हुई यानी की हुई टीका है, और उसके नीचे जो छोटे अक्षर में संस्कृत है दस है। जो श्लोक है ना 6 नंबर का, उसके बाद की जो संस्कृत टीका है बोल्ड अक्षरों में संस्कृत में लिखा हुआ जो है वह अमृत चंद्र की टीका है, और नीचे जो है ना विशिष्ट पुण्य बंधो भवती परम्पराया निर्वाणम चेती वो एक लाइन है, तो उसके बाद वो है जयसेन आचार्य ने लिखी हुई टीका। और यह जो हिंदी में जो लिखा है वो हिंदी में लिखा हुआ अमृत चंद्र आचार्य की टीका का अनुवाद है। ख्याल में आया? अभी हम किस तरह से पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ी सी आइडिया देता हूँ कि पहले हम अमृत चंद्र की जो टीका है उसको हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में हम कुछ समझ सकेंगे उतना समझेंगे, बाद में जयसेन आचार्य की टीका संस्कृत में पढ़ेंगे, और उसके बाद दिव्य ध्वनि सार जो अपने हाथ में दूसरा जो पुस्तक है जिसके अंदर गुरुदेव यानी कांजी स्वामी जी ने जो उसके ऊपर जो प्रवचन दिए थे वो प्रवचन किसी ने सुने और उसके लिखित रूप से बाद में तैयार किया वो सुने हुए प्रवचन, और वो स्वामी जी को दिखाए या अन्य पंडितों के वहां जो हाजिर होते थे वैसे चंदन जी या रामजी भाई इनको दिखाकर वो अप्रूव कराकर डे टू डे वो पब्लिश कर देते साइक्लोस्टाइल में, तो उसका गुजराती में वो पब्लिकेशन होता था और वो गुजराती का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया है जो अपने हाथ में आज के तारीख में दिव्य ध्वनि सार नाम से वो उपलब्ध है। तो अगर हमारी कोई भूल होती हो तो वहां उस दिव्य ध्वनि सार के द्वारा हम अपनी भूल सुधार सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी शुरू करते हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन श्रीमद अमृत चंद्र सूरी कृत तत्व प्रदीपिका वृत्ति ही वृत्ति यानी टीका, ये मंगलाचरण जो है वो पढ़ते हैं अभी हम।
सर्वव्यापेतद्रूपस्वरूपायत्मने गोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः।
अभी ये जो गीत वाला जो है ना जयसेन आचार्य कृत उसको छोड़ के आगे पढ़ते हैं श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य कृत मूल गाथाओं और श्रीमद अमृत चंद्र सूरी कृत तत्व प्रदीपिका नामक टीका का हिंदी भाषानुवाद। सर्वप्रथम ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमद भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित प्राकृत गाथाबद्ध श्री प्रवचन सार नामक शास्त्र की तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के रचयिता श्री अमृत चंद्राचार्य देव उपरोक्त श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण करते हुए ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा का नमस्कार करते हैं। परमात्मा को नमस्कार करते हैं कैसे जी परमात्मा का है ना हो चाहिए ना हमारे परमात्मा को नमस्कार करते हैं। अर्थ ये जो है ना पेज नंबर 2 पे नीचे अर्थ दिया हुआ है बीच में सर्वव्यापी यानी सबका ज्ञाता दृष्टा एक चैतन्य रूप यानी मात्र चैतन्य ही जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है अर्थात शुद्ध आत्मानुभव से प्रकृष्टतया सिद्ध है उस ज्ञानानंदात्मक ज्ञान और आनंद स्वरूप उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार हो। क्या कहते देखो ये आत्मा जो है उसका वर्णन कैसा किया है कि आत्मा सर्वव्यापी है, तो जैसे सर्वव्यापी कहते ही अन्य मतियों का ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि वो कहते हैं भगवान कहाँ नहीं है वो तो सर्वव्यापी है, ये दीवार तोड़ दो उसके अंदर से भगवान आएगा, जिधर लात मारो खंबे को तो उसमें से नरसिंह आएगा, किसमें नहीं है सब में है, पत्थर में है पानी में है सब में गंगा माता की बात पानी को तो क्या मानते हैं? शेष भगवान सर्वव्यापी है, चराचर में वह व्याप्त है, यानी जीव अजीव सब में वह व्याप्त है, क्योंकि वह उसका क्रिएशन है, उसने ये दुनिया बनाई है, इसलिए वो कहाँ नहीं है, सब जगह है, तो हम भी उसके अंश है। ऐसा कई जीवों की, भोले जीवों की ऐसी मान्यता है, लेकिन उसको जब हम देखते हैं तो ऐसा जो होता है तो फिर एक जन दुखी और एक जन सुखी, एक रोगी और दूसरा निरोगी, एक भिखारी और एक अमीर श्रीमंत, ऐसा भेद क्यों? अगर वही सारे भगवान के अंश है तो फिर ऐसा क्यों? अरे उसने खोटा काम किया ना, इसलिए उसको ऐसा हुआ। तो वो खोटा काम कराने वाला कौन? हेलो, अच्छा तो उसने ये सारा विश्व बनाया, तो विश्व बनाने के पहले वो कहाँ रहता था? विश्व के बाहर या अंदर? अगर विश्व उसने बनाया तो उसको किसने बनाया? अच्छा विश्व उसने बनाया तो सारा रॉ मटेरियल कहाँ से लाया? ये सारे अनुत्तरित प्रश्न है। नहीं वो तो हमारे भगवान अनादि अनंत है। अरे तेरे भगवान अनादि अनंत है तो विश्व अनादि अनंत मानने में तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि अनादि अनंत हम जैसा कहते हैं वैसा अगर हम मानेंगे तो सारी बात व्यवस्थित हो जाती है, ये तो हमने बहुत बार देखा है। तो यहाँ हम भी तो सर्वव्यापी कह रहे हैं, आत्मा कैसा है तो कहते सर्वव्यापी है, तो उनका ही हमने चोरी किया, ऐसा नहीं है। देखो बम्बई क्या यूएसए के एक भाई साहब है, उनका नाम आपको नहीं कहूंगा, उनका फोन आया था कि यहाँ जैनियों के बच्चे ही ऐसा कहते हैं, वहाँ वो जैन लोगों का एसोसिएशन है ना, कि यह जैनिज्म जो है वो हिंदुइज्म में से निकला हुआ एक पार्ट एंड पार्सल है। बोलना अभी क्या रह गया? यानी यह जैनिज्म जो है या जैन दर्शन जो है या जैन सिद्धांत जो है वह तो अनादि से अस्तित्व में है। ख्याल में आया? क्योंकि ये बना बनाया है नहीं, वो स्वयं सिद्ध है, स्वयं भू है, उसका बनाने वाला कोई नहीं, विश्व का कोई बनाने वाला नहीं है, हम उसको जानने वाले हैं। वो कब से? वो भी अनादि से अनंत काल तक रहने वाले हैं। किसी ने विश्व बनाया ही नहीं है, वह तो जानने वाले जो है वो अनादि के है, क्यों? सर्वज्ञ तो अनादि से ही है। अब सर्वज्ञ की सिद्धि करने की तो यहाँ आवश्यकता नहीं है, वह तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो बता देंगे। तो अब सिर्फ प्रश्न तो ये रहा, तो इसे सर्वव्यापी जो कहा गया है उसकी अपेक्षा क्या है? तो सर्वव्यापी का अर्थ ऐसा है कि जो भगवान होते हैं वे सर्वज्ञ होते हैं, यानी ज्ञ इज इक्वल टू नो, ज्ञ का अर्थ होता है जानना, किसको जानते हैं? सर्व को जानते हैं, यानी लोकालोक को जानते हैं, और अपनी भाषा में कहो तो तीन लोक, तो उसमें आलोक भी ले लेना, यानी तीन लोक में ऊर्ध्व लोक मध्य लोक अधो लोक इतना ही नहीं तो लोकाकाश की बात हुई, आलोक को भी जानते हैं, तीन लोक और तीन काल, वो तो आपको बस याद होगा कि हमने देखा है कि केवली भगवान या जो केवल ज्ञान है वह केवल ज्ञान का जो एक समय की जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो कितना जानती है? बहुत जानती है। आप जानते हैं? याद है कुछ? हाँ बहुत अच्छा। हाँ मुंडी मत ही ना मंडी मत बोलने दो उनको, तुम कुछ एक्शन देगा तो उधर सारा गाड़ी रुक जाती है। हाँ आप बताएंगे? हाँ बोलो। हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। आ गया गुण वाला स्टेप निकल गया। सुनो सुनो, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा बनाया। देखो देखो, आपने यहाँ तक तो बहुत सही रूप से बताया। कहाँ तक बताया कि इस विश्व में जीवों की संख्या अनंत है। अब वो केवल अनंत हम कहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बात पटती नहीं है। बात तो ऐसी है कि सुई के एक अग्रभाग के ऊपर अगर कोई कंदमूल, कोई भी कंदमूल का कोई भी एक भाग उसके ऊपर आ जाए, सुई के अग्रभाग में रहने जितना, तो वो एक सुई के अग्रभाग में जितना हम समझ लेता है बटाटा, यानी आलू का एक ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा वो आ जाए तो उसमें असंख्यात स्कंद है। एक स्कंद में असंख्यात अंडर है, एक अंडर में असंख्यात आवास है, एक आवास में असंख्यात पुलवी है, और एक पुलवी में असंख्यात शरीर है, और एक शरीर में अनंत जीव है। कितने अनंत? तीन काल में जितने सिद्ध होंगे उसको अनंत से गुनो, उसको अनंत से गुनो, उतने एक निगोदिया शरीर में अनंत जीव है। यानी तीन, अभी एक निगोदिया शरीर में जितने जीव है ना, उसका अनंतवा भाग का अनंतवा भाग जितना तीन काल के सिद्ध होंगे, और हर छह महीने और आठ समय में 608 जीव तो सिद्ध जाते हैं, सिद्ध होते हैं। अब देखो, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बटाके के सुई के अग्रभाग में रहने वाले जो असंख्य शरीर है उसमें इतने अनंत जीव, तो असंख्य शरीरों में कितने अनंत? गणित लगाना मन में। तो एक आलू में कितने अनंत होंगे? और जो कोई आलू खाता है कम से कम आधा किलो पाव किलो तो खाता होगा कि नहीं, तो कितने जीव पेट में रखता है? तो विश्वव्यापी हो गए क्या नहीं तुम्हारे पेट? ख्याल में आया? अरे हमें इस बात का पता नहीं लगता है। वसंत जी भाई सॉरी वसंत भैया क्या कि आप कोई उपदेश नहीं देते, ये करो वो करो, ये खाओ वो खाओ? अरे उपदेश क्या देना है? अगर हमें समझ बराबर हो जाए तो हम आलू प्याज लहसुन मूली गाजर बीट और न मालूम जो भी कोई कंदमूल जमीकंद जो है उसका भक्षण तो छोड़ना ही चाहिए। क्योंकि ये ऐसे जीव होते हैं कि उनको उबालो, काटो, गरम करो, फ्राई करो, कुछ भी करो, उनका जन्म मरण होता ही रहता है। एक श्वास में 18 बार तो वो जन्मते मरते। अच्छा, वो अपने कारण से मरते हैं और अपने कारण से जीते हैं ना, हम तो नहीं मारते ना, तो फिर क्या खाने में हार जाए, ऐसा लोग पूछते हैं। तो आप में ऐसा वो कोर लिया मुंह में रखा, तो जब तक तुम 32 बार चबाते हो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला ना 32 बार नहीं चबाओगे तो जल्दी मर जाओगे, ऐसा 32 बार चबूंगा, तो उतने टाइम में तो वो कितनी बार तो जन्म मरण किधर? तुम्हारे गाल में तो सुआवड़ खातु आने स्मशान भूमि बनने तैयार थी गया। क्यों? पैदा भी होते और मरते भी है, पैदा भी होते और मरते हो, पेट में जा तब भी वैसा। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा हमारा पेट बने, स्मशान भूमि बने, खाओ भला, कौन मना करता? तो जब यहाँ शास्त्रों में निषेध आता है ना ये सब, तो निषेध के पीछे क्या है वो बात तो हम देखते नहीं है। केवल किसी ने बोला, अरे नहीं नहीं उधर मत जाना भाई, उधर को ऐसा मत करो, एक मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा बताते। यहाँ तो सारी छूट है, तुम्हारे परिणामों के मालिक हो, जैसा परिणाम रखो वैसा फल भोगने को तैयार रहो। तो अपनी क्या बात हो रही थी कि जीव अनंत, तो एक बटाटे में कितने जीव, तो एक किलो में कितने जीव, और एक गुनी में बटाटे के कितने जीव, और ऐसे कितने गुनी बनती है दिन में, ये तो खाली बटाटा हुआ, इतने सारे जीव, ये तो खाली निगोदिया हुए, अभी अन्य भी बहुत है उसकी बात तो छोड़ दो। तो जीव अनंत कहते हैं, हमें अनंत का पता नहीं लगता है, मेरा कहना ये है। तो अब आगे और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, ये जीव गुना जीव मतलब जीव स्क्वेयर, अनंत स्क्वेयर हो गया,
तो ऐसा एक बार स्क्वायर जैसा हम देखते हैं, दो का वर्ग कितना होता है साहब?
चार।
चार का वर्ग कितना बहन? सोलह। सोलह का वर्ग कितना? हाँ देवेंद्र भाई, छप्पन दो सौ छप्पन सौ पैंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस, चार बार किया तो इतने हजारों में गया। ऐसे अनंत का अनंत बार वर्ग करो, कितना? एक बार अनंत का वर्ग किया, फिर जो आया उसका एक बार अनंत वर्ग करो, ऐसा कितना बार? सब पुद्गलों की संख्या आती है, हम तो याद कर लिए हैं। जीव अनंत इसे पुद्गल बोला, अनंत 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 कौन सा पुद्गल? अरे इतने ही नहीं है, आया तो जितने जीव उससे अनंत गुना पुद्गल, ऐसा कहते हैं वो पुद्गल की हमें क्या या बस कैसी कितनी क्वांटिटी है। अभी तो हमको अभी तो क्या है, छोटे छोटे सीरियल खाने वाले बच्चों जैसे नहीं रहे, अभी तो हम पुरन गोली पचाने वाले हो गए ना, तो ये डिटेल में बात आएगी समझ, क्योंकि ध्येय प्रज्ञापन चल रहा है ना, ध्येय तत्व प्रज्ञापन। तो यह एक समय का जो केवल ज्ञान होगा या केवल ज्ञान की एक समय की जो पर्याय है वो क्या क्या जाने वो हम देख रहे हैं ना। तो कितना हो गया? अनंतानंत पुद्गल, और जितने पुद्गल परमाणु है उससे अनंत गुना तीन काल के समय है, क्योंकि आज तक अनंत काल निकल गया है और जितना काल निकल गया है उससे अनंत गुना काल भविष्य में है, और अनंत काल बीत जाने के बाद जितना काल निकल गया है उससे अनंत गुना और बाकी है, क्योंकि अनंत यानी अंत जिसका नहीं है इसको अनंत कहा गया है, और आदि जिसको नहीं है उसको अनादि कहा गया है। तो तीन काल के समय, और तीन काल के समय जितने हैं उससे अनंत गुना आकाश के प्रदेश है। तो अभी और बात बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोकाकाश में केवल सिर्फ असंख्यात आकाश के प्रदेश है, लेकिन दसे दिशाओं में जाओ 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 आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, आकाश आकाश आकाश, स्पेस 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 स्पेस, नो एंड ऑफ इट। तो वो आकाश के प्रदेश जितने अनंत है उससे अनंत गुना एक द्रव्य में गुण है, कौन से द्रव्य में? प्रत्येक द्रव्य में, परमाणु में भी, परमाणु और कालाणु तो एक प्रदेश ही है, उसमें भी इतने गुण है। तो एक द्रव्य में इतने गुण, तो अनंत द्रव्यों में कितने गुण? अभी तो हमने जीव कितने देखे और पुद्गल परमाणु कितने देखे, तो अभी उसकी अनंतता ख्याल में आई ना, तो उसके सबके गुण कितने होंगे, और काल द्रव्य भी लोक प्रमाण संख्यात है। तो एक द्रव्य में अनंत गुण, तो अनंत द्रव्यों में कितने गुण, तो वो उससे अनंत गुणा। अब अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की तीन काल की पर्याय उससे भी अनंत गुणा अधिक है। अब ये तीन काल के सॉरी पूरे लोकालोक के जो अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत पर्याय जो है, उस एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है। तो एक पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत है, तो अनंत द्रव्यों के अनंतानंत गुणों के अनंतानंत पर्यायों में कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, कितना सारा ये सर्वज्ञ जो है वो एक समय में जाने। अभी सर्वज्ञ किसको कहते समझा वसंजी भाई, आप आज आके बहुत अच्छा रहा। एक घर में व्यापार में बैठेंगे कुछ नहीं मिलता है, आप तो लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का व्यापार करते हैं, हम तो भैया असंख्यात और अनंत के सिवा और कोई व्यापार नहीं करते। क्यों बेन अपने को ना लेना ना देना, लीधा दीदा कशु नहीं, खाली मोड़े थी बोलवाना चाहिए। ख्याल में तो भाई यह अपना स्वरूप जानना है, खाली बात बढ़ाने की बात नहीं है। ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव ही मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं भी जीव द्रव्य हूँ। ऐसी जब तक अपने स्वयं में ऐसी अहम बुद्धि नहीं होगी तो पैसा छोड़ के यहाँ कौन आएगा। हमको तो वही वेरी इम्पोर्टेंट लगता है, VIP। अरे उससे भी ये महा VIP यहाँ बैठा है केम बेन। जे समय जे थवानु ते थशे, अपना इच्छा मुजब शू थाय बेन। चलो सारा देखो, जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमें उसकी महिमा नहीं आती है, ऐसा ही है। देखो कोई बाप होगा वो लड़के को कहेगा कि चल बेटा दुकान में जाके बैठ, नहीं मेरे को नहीं बैठने का, मैं नहीं आऊंगा। अरे ऐसा नहीं करते बेटा, आ जा। नहीं नहीं अभी मेरे को खेलने को जाने का है, मेरे को कॉलेज में जाने का है और जो कुछ करने का है। नहीं बाबा आते जा। तो आते 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 इसको इतनी चस्का लग जाता है, रोजाना इतना पैसे का फ्लो आता है, तो फिर बाद में ऐसा समय आता है कि अरे बेटा तेरे माँ बाप भी घर में है, तू खाए बगैर हम नहीं खाते, तो कम से कम हमारे लिए तो घर आते जा। हम तो जाने दे, तेरी बीवी भी है उसका तो थोड़ा रियाज कर, ऐसा बताना पड़ता है। क्यों? उसको उसका भपका समझ में आया पैसे का। वैसे जब अपने स्वरूप को हमें पता लगता है कि मैं भी ऐसा सर्वज्ञ स्वभावी जीव हूँ और मेरे में भी ऐसे ही होने की लायकात है, ताकत है, ये ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव ही मैं हूँ, स्वभाव से तो मैं ऐसा ही हूँ, अभी पर्याय में वो व्यक्तता नहीं है, लेकिन अगर मैं पुरुषार्थ करूंगा, अपने स्वरूप में स्थिरता करूंगा, तो उसकी उपलब्धि मुझे हुए बिना नहीं रहेगी। क्योंकि हमें तो प्राप्त की प्राप्ति करनी है, बाहर का पैसा अंदर आ नहीं सकता है। अगर आता हो तो यहां विश्व में कोई पैसा ही नहीं रहता। क्यों? प्रत्येक जन अपने साथ में लेके जाता है। देखो आत्मावलोकन नाम का शास्त्र है, उसमें ऐसा लिखा है कि हे तृष्णावंत जीव, क्या कहा, तेरे इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि पूरा विश्व जो है वह तो उसमें अणुमात्र है। यानी नहीं समझे आप? देखो हम ऐसा समझते हैं कि यह जो अपना हॉल है ना बहुत छोटा है, 10x15 का होगा या जो भी होगा 12x15 का, और इसमें एक इतना अणु और इतना बड़ा हॉल, वहां तो क्या कह रहे हैं, ये पूरा विश्व जो है वो तेरे इच्छा रूपी गड्ढा में, तेरी इच्छा कितनी बड़ी है उसमें तो एकदम अणु मात्र है। और हे अभागी, ऐसा लिखा, तू समझ तो सही, वो पूरे विश्व की संपत्ति प्राप्त करने वाले अनंत जीव खड़े हैं इच्छा रूपी वाले, तो तेरे भाग में कितना आने वाला है ये तो समझ। क्यों? चाहने वाले तो अनंत है ना। ख्याल में आया? चाहने से कुछ नहीं होता। ख्याल में भाई, हमें तो चाह है क्योंकि हमें अभी भी पर पदार्थों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, अपने पहचान वालों के प्रति तो ऐसा मोह भाव उमड़ता है कि ये भी यह बात समझे। लेकिन हमारे चाहने से कोई थोड़ी होना है। तो यहां जो बात हो रही थी कि ऐसा जो सर्वज्ञ स्वभाव है, वो किसको नहीं व्यापे, यानी उसके ज्ञान में पूरा लोकालोक झलकता है, यानी वो उसका ज्ञान पूरा लोकालोक में व्याप्त है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा है। वो तो अपनी जगह छोड़ के ज्ञान जो है वह ज्ञान तो अपना स्वचतुष्टय छोड़ के कभी अन्यत्र जाता ही नहीं। तो अभी हम यहां बैठे बैठे बाहर में चांद दिख रहा है, तो हमारा ज्ञान वहां तक पहुंचा कि नहीं? एक अपेक्षा से देखो तो यह अपना स्वचतुष्टय यानी असंख्यात प्रदेश छोड़कर यह जीव के यानी आत्मा के प्रदेश, जिस आत्मा के प्रदेश के पूरे भाग में ज्ञान गुण भरा हुआ है, वह उसको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा कहने में आता है कि यहां तक जान के आया तो ज्ञान वहां तक प्रसरा उसका, तो इसलिए सर्वव्यापी जो कहने में आता है वो इस अपेक्षा से कि लोक में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई काल नहीं है कि जो इस सर्वज्ञ के ज्ञान में नहीं आया हो। ख्याल में आता है? तो इसलिए उसको कहते हैं सर्वव्यापी। इसलिए उन्होंने क्या कहा, सबका ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता की तो बात हमारे ख्याल में आ गई, ये दृष्टा जो है वो कौन से गुण से बना हुआ है, चित्राबेन बताएगी आप? आप बताएंगी बेन? हाँ जोर से। दर्शन में, तो दर्शन यानी कौन सा दर्शन? ज्ञान दर्शन वाला दर्शन, और आपने क्या कहा, मिथ्या दर्शन वाला दर्शन। ख्याल में है ना? देखो यहाँ फर्क होता है, देखो यहाँ दोनों ही गुण का नाम दर्शन है, लेकिन जब जब हम श्रद्धा की अपेक्षा से दर्शन लेते हैं तो वह या तो मिथ्या दर्शन या तो सम्यक दर्शन के इंडिकेशन करने वाला वह शब्द होगा, और जब ज्ञाता दृष्टा कहते हैं तो दर्शन नाम का जो गुण है वह दर्शन गुण का कार्य क्या है कि सामान्य अवलोकन करना। वास्तव में तो ऐसा है, चेतना जो है ना, तो चेतना नाम का जो गुण है वह उपयोग स्वरूप है, और उस उपयोग के ही दो भेद किए गए हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ये अवलोकन करना जो है ना, यानी सामान्य अवलोकन, यानी अभी कैसा कि यहाँ कोई बैठा हो वो सबको एक साथ देखे, यानी इसमें ये फला यहाँ बैठा है, फला यहाँ बैठा है, फला यहाँ बैठा है, उसने ये कपड़ा पहना है, उसने सीधा नहीं बैठा है, आड़ा बैठा है, टेढ़ा बैठा है, ये सारी बातें ज्ञान में आएगी। लेकिन सब लोग हैं, सत्ता मात्र जिनका अवलोकन होता है, उसमें कोई भी भेद किए बिना जो अवलोकन है उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन सामान्य अवलोकन। तो यहां जो कहा ना, सबका ज्ञाता दृष्टा, तो यह दृष्टा जो है वह श्रद्धा गुण की अपेक्षा से, सॉरी दर्शन गुण की अपेक्षा से है। अभी क्या बात हुई, तो इनके दो बातें क्यों बताई, तो एक ही समय में यह जो केवली भगवान होते हैं, सर्वज्ञ भगवान होते हैं, उनके सामान्य अवलोकन और विशेष ज्ञान, मतलब विशेष रूप से जानना और सामान्य रूप से जानना, ऐसा कहो वो दोनों युगपत होता है, यानी उनके केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक समय में होता है, और जो अन्य छद्मस्थ जो है वो छद्मस्थ का कैसा होता है कि उनके ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग पूर्वक होता है, और इनके दोनों युगपत होता है। इसलिए कभी भी जब इस जीव का वर्णन करते हैं तो उसको ज्ञाता दृष्टा कहेंगे या जानने देखने वाला कहेंगे। तो क्या कहा देखो, सर्वव्यापी, उसका अर्थ उन्होंने क्या बताया, सबका ज्ञाता दृष्टा, एक चैतन्य रूप। एक चैतन्य रूप यानी कैसा है, मात्र चैतन्य ही है, उसमें अन्य कोई अचेतन की बात है ही नहीं। तो एक चैतन्य रूप जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है, ये ज्ञान आत्मा कैसा है, स्व के अनुभव से प्रसिद्ध यानि वह जानने में आया है, प्रसिद्ध है यानी फेमस है, ऐसा नहीं। स्व जीव जानता है ना स्व को, तो उसका अपने आत्मा की प्रसिद्धि हुई यानी ज्ञान हुआ, ऐसा कहते हैं। तो देखो पहले क्या बताया है, तो ये आत्मा कैसा है, कहते हैं कि जो अनुभव में आया हुआ है ऐसे आत्मा की यहाँ बात हो रही है। तो कहते हैं सर्वव्यापी एक चैतन्य रूप जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है, अर्थात शुद्ध आत्मानुभव से प्रकृष्टतया सिद्ध है। यानी जब यह जीव अपने आत्मा का अनुभव करता है तो प्रकृष्ट यानी उत्कृष्ट, विशेष रूप से उत्कृष्ट जो है, इस तरह से वह सिद्ध है, यानी उसकी सिद्धि होती है। उस ज्ञानानंदात्मक यानी ज्ञान और आनंदात्मक, ऐसा यहाँ क्या लिखा, ज्ञान और आनंद स्वरूप उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार हो। तो ये कौन से आत्मा को नमस्कार किया है? हाँ बोलो। अच्छा आप क्या कहते हैं नलिन भाई? हाँ पहले तो उन्होंने देखो यहाँ तो सिद्धों को नमस्कार किया ना, तो वास्तव में सिद्धों का ऐसा आत्मा है, परमात्मा जो है अनंत सिद्ध है, उनका आत्मा तो ऐसा है, लेकिन मेरा भी आत्मा ऐसा है, कैसा है? और ये कौन लिख रहे हैं कि अनुभवी मुनिराज लिख रहे हैं ना, तो उन्होंने स्वतः अनुभव किया होगा कि नहीं, इसलिए ऐसे कैसा है तो उसका वर्णन करते हो, ज्ञान और आनंदात्मक ऐसा जो उत्कृष्ट आत्मा है, यानी विश्व में जो सारे पदार्थ है उससे भी मैं कुछ अधिक हूँ, अधिक हूँ यानी उससे कोई ग्रेट हूँ ऐसा नहीं, उसमें मेरी अधिकता है यानी उसमें मेरापन अधिक है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा उसको जब लगता है तब उसे आत्मानुभव होता है। अब अनेकांत में ज्ञान की मंगल के लिए श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं। ये ज्ञान कैसा है? अनेकांतमय है, अनेक धर्मात्मक बात जिसके ज्ञान में आएगी आएगी या आती है, ऐसा जो ज्ञान है उसके मंगल के लिए श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं। ये दूसरा नंबर का हम श्लोक पढ़ते हैं, पेज नंबर 2 पर।
नो लुप्त महामोह तमस्तो मम जयत्यद प्रकाशय जगत्तत्वम अनेकांतमयम् मह।
तीसरा भी पढ़ लो।
परमानंद सुधारस विपासितानां हिताय भव्यानां क्रियते प्रकटित तत्त्वा प्रवचन सारस्य वृत्तिर्यम्।
देखो दूसरे नंबर का जो अर्थ है उसको हम देखते हैं। अर्थ जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है। क्या कहा? ये अंधकार का जो समूह है वो कैसे अंधकार का समूह है कि मोह रूपी अंधकार जो है, तो केवल मोहन कैसा है? महामोह। महामोह यानी क्या? बहुत बड़ा ऐसा जो मोह है। तो हमने छड़ाना में पढ़ा था, याद है किसको, कि मोह महामद पियो अनादि। क्या ये मोह रूपी जो मदिरा है वो मैं एक दो दिन से नहीं पी रहा हूँ, मुझे लत तो बहुत सालों से, तो अनादि से क्या पी रहा हूँ? मोह महामद, मोह रूपी जो मदिरा है जो महा मुझे मद उत्पन्न करती है ऐसा मैं पी रहा हूँ। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि ये महामोह रूपी जो अंधकार का समूह है उसको कौन लीला मात्र में नष्ट करता है? लीला मात्र में नहीं, लीलया यानी विद इन नो टाइम, यानी खेलते खेलते जैसा, हंसते हंसते, मतलब विद नो एफर्ट्स कौन करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है ऐसा अनेकांत में तेज। ये अनेकांत जो वस्तु का स्वरूप है वो जानने वाला जो ज्ञानी है वह ज्ञानी इस महामोह रूपी अंधकार समूह को लीलया खत्म कर देता है। और वो कैसा है? ये जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है। तो ये कौन है ऐसा? तो कहते हैं अनेकांत में तेज। तो ये अनेकांत में तेज यानी जो ज्ञान है जो अनेकांत को जाने, ऐसा जो सर्वज्ञ भगवान का जो ज्ञान है वह तेज सदा जयवंत वर्ते, यानी वह सदैव उसकी जय हो। जयवंत वर्ते यानी उसकी जय हो। या अभी तीसरे जो है ना वो हम कल पढ़ेंगे, अभी तो अपना वक्त हो गया है। जावाणी के ज्ञान तै सुझे लोकानो, सोवाणी मस्त कणमो सदा देत हो तो। बोलो जिनवानी माता की जय।